ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने कल नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर में अधिक उपज देने वाली 109 किस्म के बीज जारी किए। उन्होंने कहा कि जलवायु अनुकूल और अधिक उपज देने वाली इन किस्मों से किसानों की आय बढ़ेगी। 61 फसलों की इन 109 किस्मों में 34 खेती और 27 बागवानी की किस्में हैं। खेत फसलों में बाजरा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और अन्य फसलों के बीज शामिल हैं, जबकि बागवानी फसलों में फल, सब्जी, कंदमूल, मसाले, फूल और औषधियां पौधों के बीज शामिल हैं। श्री मोदी ने मोटे अनाज का उल्लेख किया और कहा कि लोग पोषक खानपान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लाभ की चर्चा करते हुए कहा कि जनता का जैविक कृषि पर भरोसा बढ़ रहा है। किसानों ने प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर आमंत्रित हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। विचार और सुझाव इस महीने की 23 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। भारतीय म्यूचुअल फंड संघ ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच के खिलाफ हाल की हिंडनबर्ग रिपोर्ट की आलोचना की है। संघ ने एक बयान में कहा कि हिंडनबर्ग बाजार का भरोसा तोड़ने और विश्व की सबसे तेज गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के प्रगति पथ में अनावश्यक व्यवधान डालने की कोशिश कर रहा है। भारतीय म्यूचुअल फंड संघ ने कहा है कि सेबी के अध्यक्ष पर आरोप न केवल भारतीय पूंजी बाजार में उनके योगदान को नजरअंदाज करता है, बल्कि यह देश की आर्थिक प्रगति को भी कम करके आंकता है। हिंडनबर्ग के दावों में सही संदर्भ और भारतीय नियामक तंत्र के प्रति समझ का अभाव है। इसका उद्देश्य कठिन परिश्रम से अर्जित देश की उपलब्धियों को धूमिल करना है। फिलीपींस ने इस महीने की 8 तारीख को विवादित दक्षिण चीन सागर में गश्ती उड़ान भर रहे अपने विमान पर चीन की अनुचित और गैरकानूनी कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने अपनी सशस्त्र सेनाओं, विशेष रूप से वायुसेना के प्रति देश की एकजुटता व्यक्त की। फिलीपींस की सरकारी न्यूज एजेंसी ने सेना की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना ने फिलीपींस के विमान को बेवजह मुश्किल में डाला। हालांकि चीन सेना के बयान में कहा गया है कि फिलीपींस के विमान ने दक्षिण चीन सागर में उसके वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया था। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अधिकांश पुलिसकर्मी अब तक अपनी ड्यूटी पर नहीं आए हैं। इसके परिणाम स्वरूप वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। अवामी लीग पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य समारोह के साथ कल समापन हो गया। भारत 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक हासिल किए। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत पदक तालिका में 48वें स्थान पर था और उसके 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक मिले। अमरीका 40 स्वर्ण सहित कुल 126 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। चीन भी 40 स्वर्ण पदकों के साथ 91 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। वहीं जापान 20 स्वर्ण सहित 45 पदक के साथ तीसरे और ऑस्ट्रेलिया 18 स्वर्ण सहित कुल 53 पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेरिस ओलंपिक में सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और हर भारतीय को उन पर गर्व है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा कि वे पेरिस ओलंपिक में पूरे भारतीय दल के प्रयासों की सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री ने खेल नायकों को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं। राजस्थान में शनिवार से लगातार हो रही बारिश से राज्य के विभिन्न भागों में 20 लोगों की मृत्यु हो गई है। जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा में कल तेज वर्षा से कई स्थानों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कुछ जिलों में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।